नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 18 अगस्त से 2 सितंबर तक शिमला में। सत्र के दौरान होंगी कुल 12 बैठकें। प्रदेश मंत्रिमंडल ने शहरी निकायों के आगामी चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने को दी मंजूरी। टीजीटी और जेबीटी के अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में मिलेगी 2 वर्ष की एकमुश्त छूट। राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती से पहले उम्मीदवारों का डोप टेस्ट किया अनिवार्य। नए कर्मचारियों को देना होगा चिट्टे का सेवन न करने का शपथ पत्र। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर भूस्खलन से अवरुद्ध सड़कों को खोलने में नाकाम रहने का लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 18 अगस्त से 2 सितंबर तक शिमला में होगा। प्रदेश मंत्रिमंडल की आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये मॉनसून सत्र करवाने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान सदन की कुल 12 बैठकें होंगी। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की संस्तुति के बाद विधानसभा सचिवालय द्वारा आज मॉनसून सत्र को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पत्रकारों से बातचीत में मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि मॉनसून सत्र के दौरान 21 और 28 अगस्त को गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के रूप में तय किया गया है।
मॉनसून सेशन हमारा 12 दिन का होगा, 18 अगस्त और 2 सितंबर तक होगी और इसमें 12 सिटिंग्स। और ये पहली बार है कि मॉनसून सेशन जो है वो अमूमन 5-6 दिन का हुआ करता। मॉनसून सेशन जो है वो 12 दिन का किया जा रहा है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है, भारी आपदा आई है, ताकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो विधायक हैं उनको अपने चुनाव क्षेत्र के बारे में जानकारी, अपनी बात रखने का सदन के माध्यम से सरकार के समक्ष उचित मौका मिले।
बैठक में राज्य चयन आयोग द्वारा टीजीटी और जेबीटी पदों के लिए परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 2 वर्ष की एकमुश्त छूट देने का भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने अनाथ बच्चों के लिए आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेजों सहित सभी सरकारी, सरकार द्वारा वित्त पोषित और निजी तकनीकी संस्थानों में प्रति पाठ्यक्रम 1 सीट आरक्षित करने का फैसला भी लिया। मंत्रिमंडल की बैठक में आगामी शहरी निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए आरक्षण रोस्टर को अंतिम रूप प्रदान करने से पहले पिछड़े वर्ग की आबादी का सही डेटा एकत्र करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को भी मंजूरी दी गई।
आज कैबिनेट ने फैसला लिया है कि जो हमारी अर्बन बॉडीज है उसमें ओबीसी की रिजर्वेशन को जो है स्टेट जो है लागू करेंगे, ताकि इनकी जो परसेंटेज के मुताबिक जो ओबीसीज की पॉपुलेशन है उनको जो हमारी जो संस्थाएं हैं उनमें उनके हिसाब से इनको जो है कि रिप्रेजेंटेशन इन बॉडीज में जो है इनको मिलती है।
बैठक में दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 290 अतिरिक्त आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने राज्य सचिवालय में विधि अधिकारी अंग्रेजी के 5 और विधि अधिकारी हिंदी के 2 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। हाल ही में मॉनसून की भारी वर्षा के कारण राहत शिविरों में रह रहे बेघर परिवारों को किराए के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावित परिवारों को 5,000 रूपये और शहरी क्षेत्रों में 10,000 रूपये प्रति माह की दर से अधिकतम 6 माह तक किराया सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती से पहले उम्मीदवारों का डोप टेस्ट करवाना अनिवार्य कर दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नए भर्ती होने वाले सभी कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा कि वे चिट्टे का सेवन नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नशे की रोकथाम के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है और हर जिले में नशा मुक्ति केंद्र खोलने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नशे की रोकथाम के लिए पंचायत स्तर पर पुलिस कांस्टेबल के साथ आशा कार्यकर्ताओं और पंचायत सहायक की टीम गठित होगी।
जो भी पुलिस में भर्ती होगी उसमें पहली स्टेज पर डोप टेस्ट चिट्टा का टेस्ट किया जाएगा, मेनली चिट्टा का टेस्ट किया जाएगा और उसके बारे में हमने विस्तृत रिपोर्ट मंगाई है। पंचायतों में 5 और 6 पंचायत पर एक कांस्टेबल की ड्यूटी लगेगी, एक आशा वर्कर की ड्यूटी लगेगी और एक पंचायत सेक्रेटरी को उसकी कार्य प्रणाली में उसको सम्मिलित किया जाएगा। पूरी रिपोर्ट मंगाई जाएगी क्योंकि जिस प्रकार की रिपोर्ट है उसमें कई जगह भांग प्राचीन काल से वहां उगाते आ रहे हैं, नशे के में शराब भी आती है, सेवन भी आता है। तो हमने कहा कि हमारा पहला और प्रथम दायित्व ये बनता है जो चिट्टा आ रहा है जिसकी सबसे अधिक सप्लाई कहां से आती है को हमने तोड़ना है और किन व्यक्तियों के पास सप्लाई हो रही है उसको हमने तोड़ना है।
ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए 1,920 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय के साथ कुल 6,520 करोड़ रुपए के परिव्यय को मंजूरी दे दी है। आज नई दिल्ली में मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी देते हुए सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसमें बजट घोषणा के अनुरूप घटक योजना, एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना के अंतर्गत 50 बहु उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयां स्थापित करने के लिए 1,000 करोड़ रूपये शामिल है। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2025-26 से 2028-29 तक 4 वर्षों की अवधि के लिए 2,000 करोड़ रूपये के परिव्यय के साथ केंद्रीय योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अनुदान सहायता NCDC को भी मंजूरी दी है।
आज के इस कैबिनेट के फैसले में प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना का आउटले बढ़ा के 6,520 करोड़ किया गया और नए इरेडिएशन यूनिट्स और फूड टेस्टिंग लैब्स 50 इरेडिएशन यूनिट्स एंड 100 फूड टेस्टिंग लैब्स के लिए 1,000 करोड़ रुपीस का अलग से प्रावधान किया गया। NCDC कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लोन देती है, आज उसका कैपिटल 2,000 करोड़ रूपये से बढ़ाया गया ग्रांट इन एड के माध्यम से।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर भारी वर्षा से अवरुद्ध सड़कों को खोलने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सराज सहित अन्य विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों को खोलने के लिए कई दानी सज्जन JCB और LNT मशीनें दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस नेता आपदा में भी अवसर की तलाश कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि सराज के देजी गांव में आपदा से 11 लोगों की मौत हुई लेकिन एक महीने बाद भी वहां लोक निर्माण विभाग JCB मशीनें नहीं भेज पाया है। विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि जो सड़कें लोगों के खर्चे से खुल चुकी हैं, कांग्रेस नेता उनके बिल अपने नाम पर बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों पर दबाव डाल रहे हैं। सांसद डॉ सिकंदर कुमार ने राज्यसभा में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के जीवन स्तर और सामाजिक सुरक्षा में सुधार का मुद्दा पुरजोर ढंग से उठाया। इसके जवाब में केंद्रीय श्रम व रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने बताया कि केंद्र सरकार ने सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, रोजगार क्षमता बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इसके माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। सांसद डॉ राजीव भारद्वाज ने आज लोकसभा में कांगड़ा जिले में नूरपुर की बहुदेशीय फिन्ना सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल करने का मुद्दा उठाया। इस पर केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने कहा कि इस परियोजना को अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल कर लिया गया है। प्रदेश के अनेक भागों में मॉनसून की वर्षा का क्रम आज भी रुक रुक कर जारी रहा। भूस्खलन के कारण राज्य में अभी भी 291 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं। इसके अलावा 416 बिजली ट्रांसफार्मर और 219 पेयजल योजनाएं भी ठप्प हैं। वर्षा से जुड़ी घटनाओं में राज्य में 173 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 36 लोग लापता हैं। मौसम विभाग ने 6 अगस्त तक राज्य के अनेक भागों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 18 अगस्त से 2 सितंबर तक शिमला में। सत्र के दौरान होंगी कुल 12 बैठकें। प्रदेश मंत्रिमंडल ने शहरी निकायों के आगामी चुनाव में OBC आरक्षण लागू करने को दी मंजूरी। टीजीटी और जेबीटी के अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में मिलेगी 2 वर्ष की एक मुश्त छूट। राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती से पहले उम्मीदवारों का डोप टेस्ट किया अनिवार्य। नए कर्मचारियों को देना होगा चिट्टे का सेवन न करने का शपथ पत्र। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर भूस्खलन से अवरुद्ध सड़कों को खोलने में नाकाम रहने का लगाया आरोप। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।